चैप्टर टू आक्षेप। आरोप अपनी ओर से आरोपित पाठक की अपनी कल्पना द्वारा प्रस्तुत। उदाहरण, मुक्तक में जहाँ नायक नायिका का चित्रण नहीं होता है, वहाँ उनका ग्रहण आक्षेप द्वारा होता है, व्यंजना द्वारा नहीं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 128। आख्यान काव्य। आख्यान कथन, वृत्तांत, कथा। आख्यान काव्य वह काव्य जिसमें वृत्तांत या कथा कही गई हो। आख्यान ऐतिहासिक, पौराणिक और काल्पनिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। उदाहरण, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत यद्यपि एक आख्यान काव्य है, पर उसमें भी स्थल वर्णन सूक्ष्म नहीं है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 130। आख्यायिका। इतिहास सम्मत इतिवृत्त प्रधान गद्य रचना, कथा का इतिवृत्त काल्पनिक एवं सरस होता है। आख्यायिका का इतिवृत्त ज्ञात, इतिहास सम्मत तथा कवि वंश का अनुकीर्तन करने वाला होता है। उदाहरण, पद्मावती का अलौकिक रूप ही सारी आख्यायिका का आधार है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 80। आत्मग्लानी। ग्लानी से तात्पर्य शरीर, वाणी और मन के व्यापारों में ग्लपन अर्थात दुर्बलता का होना है। जब यह दुर्बलता खेद या पश्चाताप, अपनी बुराई का अनुभव होने से उत्पन्न होता है, तब आत्मग्लानी कहा जाता है। उदाहरण, आत्मग्लानी का जैसा पवित्र और सच्चा स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास ने दिखाया है, वैसा शायद ही किसी ने दिखाया हो। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 61। आत्मवाद वह दार्शनिक मत जो संपूर्ण विश्व में आत्मा को ही सत्य मानता है। इसके अनुसार आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। उदाहरण, एकेश्वरवाद स्थूल देववाद है और अद्वैत सूक्ष्म आत्मवाद या ब्रह्मवाद है। जैसी ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 135। आत्मावदान कथन, स्वकृत वीर कर्म वर्णन। रौद्र रस के अनुभवों, भावों का वक्र होना, ओठों और बाहों का फड़कना, गर्जन तर्जन करना में इसे भी एक अनुभव माना गया है। भ्रूवी भंगो निष्ठ निर्देश बाहु स्फोटन तर्जना आत्मावदान कथना आयु उच्छेपणानि च। साहित्य दर्पण पृष्ठ संख्या 255। उदाहरण, आचार्यों ने आत्मावदान कथन अर्थात अपने मुंह से अपनी बड़ाई को भी रौद्र रस का अनुभव किया है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 101। आदर्श, किसी प्रकृति या प्रवृत्ति का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व करने वाला आचरण। उदाहरण, आदर्श चित्रण के भीतर सात्विक और तामस दोनों आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 80। आदर्शात्मक, आदर्श संबंधी कला एवं नीति संबंधी नियमों को अत्यधिक महत्व देने वाले आचार्य शुक्ल भारती काव्य को मूल प्रकृति के अंतर्गत आदर्शात्मक, आइडियलिस्टिक और शिक्षात्मक डिडेक्टिक प्रवृत्तियों की स्थिति स्वीकार नहीं करना चाहते। वे इन्हें रस एवं भाव के क्षेत्र के बाहर के शब्द मानते हैं। उदाहरण, इसे कवि की सहज भाव व्यंजना रसात्मक और आरोपित भाव व्यंजना रसा भासात्मक के स्वरूप को स्वीकार कर लेने पर भारतीय काव्य के प्रकृति के निरूपण के लिए आदर्शात्मक, आइडियलिस्टिक, शिक्षात्मक, डिडेक्टिक आदि रस और भाव के क्षेत्र में के बाहर के शब्दों के व्यवहार की आवश्यकता नहीं रह जाती। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 92। आदर्शात्मक प्रेम, आइडियलिस्टिक सामाजिक समस्याओं से निरपेक्ष एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में चित्रित प्रेम। उदाहरण, फारसी की मसनवियों का प्रेम एकांतिक, लोकबाह्य और आदर्शात्मक होता था। जैसी ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 29। आधिकारिक कथा वस्तु। अधिकारी से तात्पर्य फल के स्वामी से है। प्रबंध काव्य में फल का स्वामी प्रधान नायक होता है, इसलिए उससे संबद्ध इतिवृत्त को आधिकारिक इतिवृत्त या वस्तु कहते हैं। उदाहरण, हमारे आचार्यों ने कथा वस्तु दो प्रकार की कही है, आधिकारिक और प्रासंगिक। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 72। आध्यात्मिक रहस्यवाद आध्यात्मिक मूल्यों को अमूर्त प्रतीकों द्वारा व्यक्त करने वाला रहस्यवाद फ्रांस के प्रतीकवादियों ने अमूर्त प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने का प्रयास किया था। इसीलिए उनके प्रतीकवाद का आध्यात्मिक रहस्यवाद से सैद्धांतिक संबंध स्वीकार किया जाता है। उदाहरण प्रतीकवाद सिद्धांत रूप में यद्यपि आध्यात्मिक रहस्यवाद के साथ संबंध होकर उठा है पर प्रतीक रूप में वस्तुओं का व्यवहार अच्छी कविता में बराबर होता आया है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 109। उदाहरण अतः आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो भी शैली और अभिव्यंजना पद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फुरित होती और उनका स्वतंत्र विकास होता। हिंदी साहित्य इतिहास पृष्ठ संख्या 656। आनंदवाद वह सिद्धांत जो सुख दुख की द्वंद्वात्मक अनुभूति से परे नित्य निर्दंद लोकोत्तर आनंद की अनुभूति का प्रतिपादन करता है। आनंद आत्मा का स्वभाव है, इसका क्षेत्र निःश्रेयस है, यह अनुभव गम्य है, अनिर्वचनीय है, इसका स्वाद गूंगे का गुड़ है। शैव दर्शन के अनुसार समस्त जड़ चेतन में एक ही चिति की व्याप्ति का अनुभव करते हुए आत्म और पर की भावना से ऊपर उठकर समरसावस्था को प्राप्त कर लेना ही अखंड आनंद में लीन होना है। कामायनी में प्रसाद ने समरस थे जड़ और चेतन आनंद अखंड घना था कहकर इसी आनंदवाद का प्रतिपादन किया है। उदाहरण के लिए किसी एक विशाल भावना को रूप में देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया जिसका परिणाम है कामायनी। इसमें उन्होंने अपने प्रिय आनंदवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर की है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 685। आनंद की साधना अवस्था आनंद की प्राप्ति या सिद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयत्न की अवस्था है। आनंद की साधना अवस्था उदाहरण के लिए या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण है रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध, किराता जूनियम। चिंतामणि भाग एक पृष्ठ संख्या 215। आनंद की सिद्धावस्था आनंद के सिद्ध या प्राप्त हो जाने की अवस्था आनंद की सिद्धावस्था है। उदाहरण आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण हैं आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, गीत गोविंद तथा श्रृंगार के फुटकर पद्य। चिंतामणि भाग एक पृष्ठ संख्या 215। आप्त शब्द आप्त मतलब प्राप्त पाया हुआ, आप्त शब्द आचार्य परंपरा से प्राप्त शब्द, आचार्यों द्वारा प्रमाणित शब्द। आचार्य शुक्ल ने वस्तु वर्णन के अंतर्गत किसी वस्तु का वर्णन किस रूप में होना चाहिए इसके लिए अनुभव को ही मूल आधार माना। कवि शिक्षा देने वाले ग्रंथों में जो वस्तु वर्णन का विधान किया गया है वह कवियों के लिए एक बंधन बन गया है। जिन कवियों ने अनुभव के आधार पर वर्णन न करके कवि शिक्षा के आधार पर प्रकृति या वस्तु वर्णन किया उनके वर्णन का आधार आप्त शब्द है। आचार्य शुक्ल इसे अनुचित मानते हैं। उदाहरण के लिए किसी ऋतु में क्या क्या वर्णन करना चाहिए इसका आधार प्रत्यक्ष अनुभव नहीं रह गया, आप्त शब्द हुआ। वर्षा वर्णन में जो कदंब, कुटज, इंद्रवधु, मेघ गर्जन, विद्युत इत्यादि का नाम लिया जाता रहा है वहाँ इसलिए कि भगवान भरत मुनि की आज्ञा थी कदंब निम्ब कुटलय ही शा ध्वज ही सेन्द्र गोपकै ही मेघ वातै ही सुग स्पर्श प्रावृत्त काल प्रदर्शित। रस्म मानसा पृष्ठ संख्या 126। उदाहरण आप्त शब्द जिसका शासन कर्म अथा तथा थोड़ा बहुत बुद्धि पर भी पाया जाता है सूरदास पृष्ठ संख्या 1। आप्तो लब्ध वेद श्रुति स्मृति इतिहास आदि प्रमाण कोटि में आने वाले ग्रंथों से प्राप्त। उदाहरण आप्तो लब्ध का क्षेत्र इतिहास है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 159। आरंभवाद सृष्टि की विकास प्रक्रिया के विश्लेषण को लेकर भारतीय दर्शन में तीन प्रस्थान हैं आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। आरंभवाद के अनुसार यह विश्व विभिन्न परमाणुओं के पुंज से उत्पन्न होता है, कार्य की उत्पत्ति एक नवीन घटना है, यह कहना कि कारण में ही कार्य निहित रहता है संगत नहीं है। घड़ा मिट्टी से बनता है वह एक नवीन सृष्टि है, यह कहना ठीक नहीं है कि घड़ा मिट्टी में स्थित है। न्याय वैशेषिक तथा कर्म मीमांसा आरंभवाद को ही महत्व देते हैं। उदाहरण, पद्मावत के आरंभ में सृष्टि का जो वर्णन है वह तो बिल्कुल स्थूल तथा न्यायिकों, पौराणिकों तथा जनसाधारण के आरंभवाद के अनुसार है, जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 153। आठवीं व्यंजना, वक्त्री, बोधव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देशकाल और चेष्टा के वैशिष्ट से जिस शक्ति द्वारा व्यंगार्थ की प्रतीति होती है वह आर्थी व्यंजना कही जाती है। इसके एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण, तीसरे का समावेश हमारे यहाँ आर्थी व्यंजना के कारणों के अंतर्गत होता है। वक्त्री बोधव्य वाक्यानाम अन्य सन्निधि वाच्ययोः प्रस्ताव देश कालानाम काको चेष्टी आदि कस्य च। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 165। आलंबन, भाव के विषय वह वस्तु व्यक्ति या व्यापार जिसके प्रति भाव व्यक्त किए जाते हैं। उदाहरण, साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 9। उदाहरण, जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 19। द्वितीय उदाहरण, आलंबन से हमारा अभिप्राय केवल रस ग्रंथों में गिनाए आलंबनों से नहीं है, उन सब वस्तुओं और व्यापारों से है जिनके प्रति हमारे मन में किसी भाव का उदय होता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 302। तीसरा उदाहरण है, भक्ति और शील की परस्पर स्थिति ठीक उसी प्रकार बिंब प्रतिबिंब भाव से है जिस प्रकार आश्रय और आलंबन की। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 56। आलंबनगत विरोध, एक ही आलंबन के प्रति विरोधी तथा कभी कभी सजातीय भावों की एक ही साथ अभिव्यक्ति आलंबनगत विरोध है। उदाहरण, अतः रति के साथ युद्धवीर का भाव सजातीय होने पर भी एक ही आलंबन के प्रति होने से विरुद्ध हो जाएगा। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 253। आलमे ख्वाब, स्वप्न जगत। उदाहरण, उसी भाव चित्र जगत से हम आत्म जगत को जान सकते हैं जिसे आलमे गैब और आलमे ख्वाब भी कहते हैं, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 138। आलमे गैब परोक्ष लोक अदृश्य जगत। उदाहरण, उसी भावचित्र जगत से हम आत्म जगत को जान सकते हैं जिसमें आलमे गैब और आलमे ख्वाब भी कहते हैं, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 138। आलस्य, वह मानसिक अवस्था जिसमें क्रिया में तत्पर न होने की प्रवृत्ति प्रधान हो, आलस्य है। यद्यपि साहित्य के ग्रंथों में शारीरिक श्रम और गर्भ आदि के कारण उत्पन्न आलस्य को संचारी कहा है, पर संचारी का लक्षण उस पर ठीक ठीक नहीं घटता। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 224। आलोचना कला, किसी काव्य रचना के सौंदर्य और उसके प्रभाव का विवेचन करने वाली गद्य विधा। उदाहरण, इस प्रकार किसी काव्य रचना के प्रभाव का अलग अलग पाठकों द्वारा अलग अलग विवेचन करने से एक ही काव्य पर भिन्न भिन्न प्रकार के और कई कला ग्रंथ तैयार हो जाएंगे। वे सब ग्रंथ उस काव्य से और भी वस्तु होंगे वह अवश्य है, पर यही आलोचना कला है, इसके आगे आलोचना जाएगी कहाँ। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 93। आवरण, माया की वह शक्ति जो ब्रह्म के स्वरूप को ढक देती है आवरण कहलाती है। उदाहरण, प्रकृति की दो शक्तियां मानी जाती हैं, आवरण और विच्छेद, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 147। आवेग, संचारी भावों में एका भयंकर उत्पात तथा प्रिय एवं अप्रिय बात को सुनने से उत्पन्न चित्त की घबराहट आवेग है। उदाहरण, भय, आश्चर्य, हर्ष आदि के कारण आवेग, लज्जा के कारण अवहित्था, रति के कारण औत्सुक्य, शोक, दुख आदि के कारण ग्लानि साथ साथ उत्पन्न होती है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 208। आश्चर्य, अलौकिक वस्तु या व्यापार को देखकर होने वाला चित्त का विस्तार ही आश्चर्य या विस्मय है। उदाहरण, साहित्य के आचार्यों ने हर्ष को अद्भुत का संचारी कहकर आचार्य का सुखात्मक भाव होना स्पष्ट ही कर दिया। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 194। आश्रय, नाया का नायिका जिनके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण, हमें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञाता और ज्ञेय है वही भाव के क्षेत्र में आश्रय और आलंबन है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 78 और 79। उदाहरण लज्जा, ईर्ष्या और गर्व के यद्यपि स्वतंत्र विषय होते हैं, पर उनको उनको और तेज ध्यान नहीं रहता जितना कारुण्य की ओर रहता है। आश्रय का ध्यान तो कुछ रहता भी है, पर श्रोता या दर्शक का ध्यान कुछ भी नहीं रहता। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 207। उदाहरण, भक्ति और शील की परस्पर स्थिति ठीक उसी प्रकार बिंब प्रतिबिंब भाव से है जिस प्रकार आश्रय और आलंबन की। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 56। आश्रयगत विरोध, परस्पर विरुद्ध भावों को एक ही आश्रय में एक ही समय में दिखाना आश्रयगत विरोध है। उदाहरण, परस्पर विरुद्ध भावों को एक ही आश्रय में एक साथ दिखाना दोनों की किसी काम का न रखना है। रश्मिमांसा पृष्ठ संख्या 252। आस्वाद पदवी, आचार्य के अनुसार रस किसी स्थिति या तथ्य का ज्ञान नहीं, वरन यह तो सहृदय सामाजिक के हृदय में उद्भूत आनंद का आस्वाद है। महिम भट्ट का अनुमानवाद रस की अनुभूति के आस्वाद की व्याख्या नहीं कर पाता। अनुमान से ज्ञात रस का बोध, रस का आस्वाद कैसे हो जाता है, इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर अनुमानवादी आचार्य महिम भट्ट के पास नहीं था। उदाहरण, अनुमान द्वारा बेधड़क इस प्रकार के ज्ञान तक पहुंचकर कि अमुक के मन में प्रेम या क्रोध है, उन्हें फिर इस ज्ञान को आस्वाद पदवी तक पहुंचाना पड़ा है। इस आस्वाद पदवी तक रत्यादि का ज्ञान किस प्रक्रिया से पहुंचता है, यह सवाल ज्यों का त्यों रह जाता है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 164। समाप्त।